फिर क्या होगा, हम आपके घरों में झाड़ू देंगी, बर्तन मांजेंगी, किसी प्रकार से रह लेंगी, अब आपको नहीं छोड़ेगी, आपके साथ रहेगी। यदि हम आप रहते ना तो नहीं ग्रहण कर सकते। कृष्ण जो ठीक है, हम देख लेंगे संसार को और समाज को हम देख लेंगे। बस उनको अंगीकार कर लिया, तुमको पाटरानी के रूप में रखेंगे, नौकरानी के रूप में नहीं। बर्तन मांजने के लिए तुम्हारे घर में हजारों बात ये सब नौकरानियां रहेंगी। जब तुमने हमारा शरण ग्रहण कर लिया, सर्वधर्मान प्रत्यज, जो सब धर्मों को छोड़ करके कृष्ण का शरण ग्रहण करता है उसको वो एकदम अपना बना लेते हैं, उनको अपना बना लिया। ये कामना नहीं है, काम नहीं है, यही प्रेम है। कृष्ण ऐसे परम दयालु है, ऐसे कृष्ण को छोड़कर के किसका भजन करने जाएंगे। पुतना उनको मारने के लिए आई प्राण से, अपने स्तनों में विष लगा करके, और उस कृष्ण ने क्या किया, उसको माता की, अरे माता का विष बना करके आई, बस गोलोक वृंदावन में अपनी मैया बना दिया उनको। ऐसा दयालु कौन होगा। इसलिए कृष्ण ही परम तत्व है, प्रेम की प्रतिष्ठा करने के लिए जगत में आए। इसलिए हिरण तक भी उनको दे करके प्रणय की भीख मांगते हैं। नदी जमुना क्या करती है, जमुना नद्यस्तदा उपधार्य मुकुंद गीत आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा आलिंगन स्थगित उर्म भुजई मुरारे गृणंति पाद जुगलम कमलोपहार। यह नदी है ना, किंतु नदी की अधिष्ठात्री देवी होती है। आप लोग देखते हैं कि नदी में तो पानी है, किंतु उसकी अधिष्ठात्री देवता होती है। जैसे हम शरीर हैं, शरीर का अधिष्ठात्री देवता आत्मा है, पहाड़ में भी प्राण है उसका अधिष्ठात्री देवता है, हवा में भी पवन देव हैं, पानी का अधिष्ठात्री देवता वरुण देव हैं। इस तरह से बहुत रिसर्च के बाद में हमारे ऋषियों ने इन सत्यों को उपलब्धि की और तब इसका प्रचार किया। ये सब ऐसे तैसे नहीं है, हमारा भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति एक मूल्य के ऊपर में स्थिर है, उसके एक एक बात सत्य है, आदमी न समझे वो दूसरी बात है। तो क्या बतला रहा था, नदस्तदा उपधार्य गीत, कृष्ण ने वेणु बजाई, इतना सुंदर निराला रूप, मानो समस्त विश्व का सारा सौंदर्य सिमटकर कृष्ण के अंगों में समा गया है। वेणु बजाते ही जमुना जी की धारा जो नीचे जा रही थी लौट आई, और उधर वाली ऊपर वाली आ रही है, तो उससे क्या हुआ, भ्रमर बन गया। नीचे वाली नीचे जा नहीं रही बल्कि ऊपर में ही आ रही धारा लौटकर, और ऊपर वाली आ ही रही है, इसलिए ऐसा पानी घूमने का जी, इसको पानी मत समझो घूमने की, मनोभव भग्न वेगा। मनोभव माने कहते हैं काम या प्रेम, कृष्ण की बंसी की ध्वनि से और उनके सुंदर रूप से माधुर्य से जमुना जी के अंदर में कृष्ण की सेवा की वासना जग उठी और उत्ताल तरंगे उठी कृष्ण का आलिंगन करने के लिए। मानो उनकी उर्मी क्या है, उर्मी मैंने वो भुजाएं हैं कृष्ण को आलिंगन करने के लिए यहां तक आए, किंतु कृष्ण ने उनके प्रति तनिक भी काम भाव नहीं दिखलाया, तो झट लज्जित हो गई, तो वो नीचे उतर करके उनके चरणों में कमलों का उपहार देने लग गई। ये कृष्ण का सौंदर्य और प्रेम है। ये पानी तक को भी, नदी तक को भी कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया। आकाश में बादल छा करके कृष्ण जहां गोचारण करते हैं, सूरज को बादल ढक लेते हैं और उन पर सुंदर सुंदर कोमल और शीतल जल की बूंदें उन पर गिराते हैं। पृथ्वी घास से भर जाती है, उनके चरण उनके घासों पर पड़ते हैं, कहीं पथरीली नुकीली ये सब चीजें नहीं आती। कृष्ण का प्रेम दान करने के लिए लताओं को भी उन्होंने प्रेम दिया, वृक्षों को, वृक्ष अपने डालों से फल फूलों से भर करके और नीचे उतर आते, कृष्ण के चरणों में उपहार देते। ऐसा कोई अवतार नहीं प्रेम के, इसीलिए इनको लीला पुरुषोत्तम कहते हैं, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। एक ही तत्व दो बातों के लिए जगत में आते हैं। इनका जन्म इस प्रेम की स्थापना करने के लिए, आत्मधर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए और वर्णाश्रम धर्म तीनों की रक्षा करने के लिए ये धर्म संस्थापना था संभव। अब जब ये आए कहां आए, कंस ने अपनी बहन को जेल में बंद कर दिया, विवाह होने जा रहा था, विवाह हो गया था, कंस स्वयं अपने हाथों से रथ हांक रहा था और अपने जमाई और बहन को लेकर के उनके घर में पहुंचाने जा रहा था वसुदेव जी को। जब वो अपने घर से निकला, बाजे बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, फूल की वर्षा हो रही थी, सज धज करके तुलहीन देवकी देवी को, उसका वो भाई लगता था, वो उसको लेकर के पहुंचाने जा रहा था। उसी समय हठात आकाशवाणी हुई, रे कंस, दुष्ट कंस, तू जिसे बड़े सज धज कर और जिसको ले जा करके ले जा रहा अपने रथ पर चला करके, उसी के गर्भ से आठवां गर्भ तुम्हारी हत्या करेगा, तुम्हारा ध्वंस करेगा। और सुनते ही एकदम नीचे कूद गया, तलवार हाथ पे ली और एक हाथ से देवकी का केश पकड़ लिया और दूसरे हाथ से तलवार लेकर के अभी मारू, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, मैया को खत्म करो जब बेटा हो ही नहीं। असुर लोग कैसे होते हैं, आकाशवाणी हुई, उसे डर गया जैसे इससे हमारा पद होगा, किंतु उसको झूठा करने के लिए मारने जा रहा है। यदि वो बात सत्य है, ये आठवें गर्भ से उसका जान हंता जन्म लेगा ही, तो विश्वास करना चाहिए था, तो विश्वास तो कर लिया। अब ये चाहता कि उस विश्वास को भी वो आकाशवाणी को झूठा बनाए, ये असुर लोगों का काम है। विश्वास किया, अर्ध कुकुटी न्याय, मुर्गी का आधा भाग मांगा माना और आधा भाग नहीं माना। एक आदमी, दो भाई थे, तो मुर्गी रोज सोने का अंडा देती, कुछ दिनों के बाद में दोनों में लड़ाई हो गई। उसने कहा जैसे मुर्गी दोनों में बांट ली जानी चाहिए। उसने कहा जो मुख्य तरफ में हमारा रहेगा और एक ने कहा जो हमारा पीछे की रहेगा, दोनों में झगड़ा लग गया। जिधर से अंडा सोने की देती है वो हमारे तरफ रहेगा और तुम खिलाना, मुख तुम्हारे तरफ। अब इसी के लिए दोनों में लड़ाई लगी, अंत में किसी तरह से सुलह सपाटा नहीं हुआ। अच्छा तो हम काट करके विवाह कर ले, और बतलाओ काट करने से क्या होगा, अंडा मिलेगा। उसने सोचा जब पीछे वाला भाग हमको मिलेगा तो हम उसी से अंडा पैदा कर लेंगे, सब दो पीछे वाला लेना है। किंतु ये नहीं जानते हैं काट देने के बाद में मुर्गी मर जाएगी और उसे अंडा नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति ये सब संसार वालों की है। तो असुर लोग ऐसे ही होते हैं, उसको चाह जैसे इसको मिथ्या बना दे, इसको हम और अभी काट दें, जब बच्चा होगा ही नहीं। वसुदेव जी ने कहा ये बात तो जरूर होगी ही, हो करके रहेगी, क्यों, ईश्वर में विश्वास करते हैं, जरूर होगी। अच्छा अब थोड़ी सी हमको प्रयत्न करनी चाहिए। कैसे प्रयत्न करना चाहिए, कुछ लोग नौका में सवार होकर के कहीं जा रहे थे, एक नदी थी, चौड़ी थी, उस नाव में करीब करीब 50 आदमी भरे थे। नौका जब चलने लगी आकाश साफ था, किंतु यूं ही आधी दूर तक पहुंचे, इतने में नौ आकाश में मेघ छाए और बड़ी जोर से आंधी चली और उसमें नौका डगमगाने लगी। अब तो सभी डर गए, अब नौका डूबी। उसमें कोई एक संत महापुरुष थे, उन्होंने देखा जब नौका डूब रही है भगवान की इच्छा है, इसलिए नदी का पानी लेकर के उनके पास में एक पीतल की बाल्टी थी लेकर के भरना आरंभ किया। अरे महापुरुष तू क्या कर रहा है, एक तो नौका डूब रही है और तुम ऊपर का पानी और इसमें कर, तो उनको अपने काम से काम धुन से धुन वो पानी वहां का भर करके और इसमें डालने लगे। लोगों ने उनको पकड़ने की चेष्टा की, माने नहीं। थोड़ी देर के बाद ही में भगवान की इच्छा से हवा बंद हो गई और नौका एकदम किनारे अब आने वाली थी और नौका डूबनी शांत हो गया, वातावरण सब ठीक हो गया। तो अभी महापुरुष ने कहा क्या किया, पानी लेकर के नीचे नदी उसरे से नौके से उलीच नार में कहे, अब भद्र मानुष अब क्या तू कर रहा है, अब तो नौका आ गई है और ये डूबेगी नहीं, अब तो हवा भी शांत होगी, अब इस क्या कर रहे। तो यही तो कर रहा हूं, भगवान की इच्छा है जो न डूबे इसलिए इसका पानी में फूक रहा हूं। भगवान जो चाहता, मैं भगवान का सेवक हूं, मैं तुम लोगों का किसी का नहीं, भगवान की जो अच्छी होगा उसमें करेंगे। इसलिए वसुदेव जी सोच रहे हैं ये जब आकाशवाणी है जरूर सत्य होकर रहेगी ही और थोड़ा सा निमित्त बन जाना है। उन्हें कहा जी भले मानुष क्यों मार रहे हो अपनी बहन को, तुम्हारी बहन है ना, अरे इसका लड़का होगा तो मैं तुझे, यदि लड़की होगी तो तुम्हारे लड़के के साथ में इसकी शादी कर दूंगा और लड़का होगा तो तुम्हारी लड़की होगी तो हम शादी कर लेंगे। अरे बहन को स्त्री जाति को मारना नहीं चाहिए, तुम्हारी बहन तो है ना, मत मारो। इसका लड़का होगा तो मैं आठवां लड़का, क्या मैं सभी लड़के तुमको दे दूंगा, जिसकी इच्छा होगी तुमको मार डालना या रखना। अच्छा तो ठीक बात है, इनकी सत्यता पर उनको विश्वास था, लड़का होगा देगा ना तो हाँ तो ठीक है। अच्छा तो पहले अभी जेल में बंद कर देते हैं, अभी देखते हैं क्या हो गया। बहुत जल्दी समय हो गया, 5 मिनट का साथ ही साथ में उन्होंने कहा आठवां लड़का दे देंगे, बस जेल में बंद कर दिया। आठवां लड़का का पहला लड़का हुआ, उन्होंने दे दिया, कहा बहुत अच्छा अब घर में जाओ। वे प्रसन्न नहीं हुए न कुछ हुआ। अब धीरे धीरे एक एक पुत्र होता गया, उसको छोड़ता गया कि ये आठवां होगा तब देखे। इतने में नारद महाराज जी पहुंच गए, कहिए ये भले मानुष तू क्या कर रहा है, ये सभी बड़े हो जाएंगे, उनकी गिनती भी कोई ठीक नहीं है, यदि 7वें से करेगा तो 6ठा हो जाएगा 8वां, और 1 से करेगा तो 8वां होगा, और 8वां से करेगा तो फिर 7वां हो जाएगा 8वां, इसलिए कोई ठीक नहीं, विष्णु वैसे ही विष्णु है, बहुत धूर्त आदमी है, उसकी कोई भी ठीक नहीं, ये क्या क्या करेगा, इसलिए ये बड़े होंगे सभी पक्ष लेकर के 8वें का तुम्हें मारेंगे। बस उनके चक में आ गया, क्यों, जब तक ये पाप का घड़ा नहीं भरेगा ये मरेगा नहीं बदमाश, इसलिए जल्दी से पाप का घड़ा भरे। जीवात्मा अजर अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता, शरीर का ही है, उनका भी कल्याण हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। नारद जी का दोष नहीं, उनका कल्याण करने के लिए ऐसा किया। अंत में 8वें गर्भ से पैदा हुए, कहां पर पैदा हुए, कंस के कारागार में आधी रात के समय में। किंतु जन्म नहीं हुआ, ये मार्के की बात, क्या हुआ, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, यहाँ पर देवकी हितकारी, चतुर्भुज रूप में पैदा हुए, 16 वर्ष के जैसे सब श्रृंगारों से भरे हुए, लंबी लंबी चोटी और यहाँ पर मुकुट सोने का, कंगन और अच्छी धोती पीताम्बर इत्यादि पहने हुए, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, ऐसा कोई बेटा होता है किसी को, 16 वर्ष के जैसे। तो यहाँ पर प्रकट हुए, पुत्र के रूप में पैदा नहीं हुए, यहाँ पर जन्म लीला नहीं है, प्रकट हो गए जैसे खंभ से प्रकट हो गए, तो उसको जन्म मानेंगे, इसलिए यहाँ पर जन्म के लीला नहीं, आविर्भाव भगवान ऐसे ही प्रकट होते हैं, किसी के गर्भ से पैदा नहीं होते। किंतु ये दिखाना था जो भक्तों की कृपा करने के लिए जन्म की लीला भी कराते हैं, इसलिए यहाँ पर आंशिक रूप में पैदा हुए ऐश्वर्य के साथ में, कहा देवकी के, और साथ ही साथ में उसी समय उसी क्षण में उसी आधी रात में यशोदा जी के गर्भ से पैदा हुए, कैसे, नर बालक के रूप में, ठीक उसी समय में यहाँ पर परिपूर्ण रूप में आए, रसो वैसा हो कृष्ण स्वयं रूप में यशोदा के रूप में आए। ये जो है यहाँ पर यही ब्रजेंद्र नंदन, आराध्य भगवान ब्रजे सतन धाम वृंदावनम रम्या का चुतुपासना पदुपदु बर्गेन जा कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमा मर्तुमान। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्। अब इसके व्याख्या दूसरे दिन, आज वहां पर शाम को कथा होगी, तो उस शाम को कृष्ण की लीलाएं, और कल यहाँ पर होना है, कल कृष्ण की दामोदर लीला इत्यादि बड़ी सुंदर मधुर लीलाओं को मैं श्रवण करा करके और फिर अपनी लीला कथा समाप्त। आप लोग इसमें भक्ति को ग्रहण करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। जो लोग भक्ति को नहीं करेंगे ग्रहण, भगवान का नाम नहीं लेंगे, वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो सकते, ये एकदम ध्रुव निश्चित है। चाहे पृथ्वी बदल जाए किंतु ये सिद्धांत बदल नहीं। काम यह है, बारी मथे बरु हो य घृत, बारू मथे बारी मैंने पानी हो य घृत, सिकताते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरीय। यह सिद्धांत अपेल, इसको ठीक समझेंगे। पड़ोसियावर रामचंद्र की शिशि गौर प्रेमानंदे। बस
भक्ति किसी भी भक्ति में लगे तो उससे भी मन, एक पॉइंट यहाँ हम बताना चाहते हैं, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं विज्ञान के, विज्ञान जो है इतना पीछे है हमारे धर्म के सामने कि जितनी चीजें धर्म में बताई गई है विज्ञान उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है जो आपके सामने हम रखना चाहते हैं। हमारे धर्म में माता का स्थान सबसे पहले दिया गया है। हम राधे कृष्ण बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं, माता पिता बोलते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, हम तुमेव पिता नहीं बोलते, माता का स्थान पहले देते हैं। इसका एक साइंटिफिक प्रूफ आपके सामने हम देने जा रहे हैं, क्योंकि साइंस बहुत पीछे है, थोड़ी थोड़ी बातें अभी समझना शुरू किया है साइंस। हमारे शरीर में जो शक्ति होती है, स्वामी जी ने अभी बताया कि कृष्ण जी की जो शक्ति थी वो राधिका जी थी। वहां भी देखिए जेंडर है मेल फीमेल का। हमारे आपके सबके बॉडी में जो सेल्स हैं उसके अंदर एक ऑर्गेनेल्स है, उसको बोलते हैं माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन जाती है माइटोकांड्रिया तक जाती है, और एक एक सेल जो है उससे सांस लेता है। अगर माइटोकांड्रिया डिफेक्टिव हो तो हम सांस नहीं ले सकते हैं और मृत्यु हो जाएगी सेल की। तो माइटोकांड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, और हमारे बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं वो सेल से बने हुए हैं। देयरफॉर माइटोकांड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द ऑर्गन्स, और हमारा आपका शरीर जो है बड़े सारे ऑर्गन से बना हुआ है। देयरफॉर माइटोकांड्रिया इज पावर हाउस ऑफ दिस होल बॉडी। हमारे आपके शरीर में जो माइटोकांड्रिया है वो केवल मां से आती है, पिता से नहीं आती। इसलिए जो हमारे धर्म में बताया गया है मां का स्थान सबसे पहले, जो शक्ति हमको मिलती है वो मां से मिलती है। जब बच्चा गर्भ में रहता है मां के, तो हम मां के स्वास्थ्य का ध्यान देते हैं। मां क्या सोचती है, क्या खाती है, क्या पीती है, उसका डायरेक्ट असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसलिए जो हमारे धर्म में चीजें बताई गई हैं वो एब्सोल्यूट नॉलेज के ऊपर बेस्ड हैं। हम जो वैज्ञानिक आजकल काम करते हैं वो एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है, उसको हम रिसर्च बोलते हैं, हम रिसर्च करते हैं। तो ये सत्य है कि जो हमारे धर्म में बताया गया है वो एब्सोल्यूट नॉलेज, हमारे ऋषि मुनि ने बहुत प्रयत्न करके चीजें हमको बताया है, इसलिए हमको उसके ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि आजकल के जो हम लोग हैं उसका हमको कारण चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमारे धर्म में ऐसा क्यों बताया गया है। वो साइंस वहां तक पहुंची नहीं है, धीरे धीरे साइंस सीख रही है। तो स्वामी जी ने जो बताया है हम उस पर ध्यान दें, अपने जीवन को उस पर चलाएं, तो हमको अवश्य सुख और शांति का अनुभव होगा। हम स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से और मंदिर की ओर से। धन्यवाद जी।
विशेष की ओर से उन सभी भक्तों का स्वागत है जो आज मंदिर में पहली बार आए हैं।